चैप्टर 15। दिशा भी रूही के साथ जाने के लिए खड़ी हो जाती है। सुमन रूही की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है और ड्राइवर को बोल उन्हें अनाथाश्रम छोड़ने के लिए बोल देती है। रूही के जाने के बाद रुद्र के मोबाइल पर भी किसी का मैसेज आता है, जिसे देख वे भी विलासी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर जैसी जगह पर एक आदमी के सिर्फ दर्द भरी चीखने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कुछ बॉडीगार्ड्स एक आदमी को बेरहमी के मारे जा रहे थे। वे आदमी जो कोई और नहीं बल्कि अखिल था, जिसने रुद्र के इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट उसके बिजनेस राइवल को दिए थे। अखिल अपने सामने किंग साइज चेयर पर आराम के बैठे रुद्र को देख लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना बोल वे रुद्र के पैरों में गिर जाता है। वहीं रुद्र अपने पैरों से अखिल के हाथों को बेरहमी से मसलते हुए बोला, मेरे इलाके में गलती की सिर्फ और सिर्फ सजा होती है, ना कि माफ़ी। इतना बोल वे एक चाकू ले अखिल के पीठ पर बेरहमी से मार देता है और एक दर्द भरी चीख के साथ अखिल जमीन पर जा गिरता है। वे अब भी जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था, जिसे देख रुद्र अपनी बंदूक निकाल एक के बाद एक गोलियां अखिल के सीने पर उतार देता है और इसी के साथ अखिल की बेरहमी से मौत हो जाती है। अखिल को मारने के बाद रुद्र के चेहरे पर तो कोई सिकन नहीं आई, लेकिन रुद्र के पीछे खड़े अमन की हालत खराब हो रही थी। वे अपने शैतान बॉस को अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वे जब अपने बॉस को इस तरह से बेरहमी करते हुए देखता है तो डर के मारे उसके चेहरे पर सिकन आ जाती है। वहीं रुद्र अपने हाथों को रुमाल से पोंछ उस रुमाल को वहीं फेंक बाहर निकल जाता है। वहीं अमन जब अपने बॉस को जाते हुए देखता है तो वे भी दौड़ते हुए उनके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनाथाश्रम में रूही और दिशा दोनों अनाथाश्रम पहुंच कपड़े बदल एक ही बेड पर आंखें बंद किए लेटे हुए थे, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। आज जो भी उन दोनों के साथ हुआ वे वही सब सोच रही थी। दिशा देवांश के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोली, पता नहीं सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं जब देखो तब उनके ऊपर गिरती पड़ती रहती हूँ। अब मैं सर की 10 कदम दूरी पर ही रहूंगी, जब मैं दूर रहूंगी तो गिरने पड़ने का भी कोई सवाल नहीं रहेगा। वहीं रूही रुद्र के बारे में सोचते हुए बोली, रूही वे साइको सच में काफी खतरनाक है, तेरे साथ वे कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, अब तो उस साइको के सामने जाना ही नहीं, वरना वे पता नहीं तेरे साथ क्या क्या करेगा। रूही और दिशा यही सब सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चली जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अगली सुबह रूही कॉलेज के लिए और दिशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। दिशा ऑफिस के लिए तैयार होते हुए रूही से बोली, रूही जल्दी चल वरना मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा, फिर मुझे अपने खड़ूस बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। दिशा की बात सुनकर रूही अपना बैग उठाते हुए बोली, हाँ दी बस हो गया चलो। इतना बोल दोनों निकल जाती हैं। दिशा स्कूटी से पहले रूही को कॉलेज छोड़ती है, उसके बाद वे खुद ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। वहीं रूही कॉलेज के अंदर जाती है तभी उसे परी और अर्जुन मिल जाते हैं, जिसे देख वे खुश हो जाती है। वहीं अर्जुन रूही को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, क्या बात है रूही आज तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। अर्जुन की बात सुनकर रूही अपनी तारीफ खुद के ही करते हुए बोली, हाँ वे तो मैं रोज लगती हूँ। परी उन दोनों की बात पर हंसते हुए बोली, बस हो गया तुम दोनों का तो अब चलें। परी की बात सुनकर रूही और अर्जुन मुंह बना अंदर चले जाते हैं। अर्जुन अपनी क्लास में, परी और रूही अपनी क्लास में चले जाते हैं। रूही जब क्लास में पहुंचती है तो क्लास के सारे लड़के रूही को ही देखने लगते हैं, क्योंकि रूही इस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पर रूही उन सभी पर कोई ध्यान न देते हुए परी के साथ जा अपनी शीट पर बैठ जाती है। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और इसी तरह एक के बाद एक क्लासेस चलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दिशा ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वे 10 मिनट लेट हो गई है, जिसे देख वे अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए जल्दी से देवांश के कैबिन में चली जाती है, क्योंकि दिशा देवांश की पर्सनल सेक्रेटरी थी। वहीं ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां दिशा को देवांश के कैबिन में जाते हुए देखकर गुस्से में कहती हैं, पता नहीं देवांश सर को इस बहनजी में ऐसा क्या दिखा जो उन्होंने एक के एक स्मार्ट लड़कियों को छोड़कर इस बहनजी टाइप लड़की को अपनी सेक्रेटरी बना लिया। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की भी दिशा की बुराई करती हुई बोली, सच में यार पर एक बात मानना पड़ेगा, इस बहन जी के तो भाग्य ही खुल गए जो ये रोज देवांश सर को इतने करीब से देखती है, उनके बातें करती है, उनके साथ रहती है, इस बहन जी के तो मजे ही मजे हैं। इसी तरह दोनों लड़कियां मिल एक के बाद एक दिशा की बुराई करने लगती हैं। वहीं दिशा देवांश के कैबिन के बाहर पहुंच गेट नॉक करती है, जिसे देख देवांश अपनी कड़क आवाज में बोला, कमिंग। देवांश के इतना बोलते ही दिशा अंदर चली जाती है। वहीं देवांश जैसे ही ये महसूस करता है कि दिशा आ गई है, वैसे ही लैपटॉप पर तेजी से चलती उसकी उंगलियां रुक जाती हैं और वे अपनी जलती हुई निगाहों से दिशा को देखने लगता है। वहीं दिशा जैसे ही देवांश की जलती हुई निगाहों को देखती है, वैसे ही अपनी नजरें झुकाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, सॉरी सर मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी आपकी कॉफी लेकर आती हूँ फिर आपका स्केड्यूल बताती हूँ। इतना बोल वे जाने को हुई तभी उसके कानों में देवांश की सर्द आवाज पड़ती है, जिसके उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। वहीं देवांश अपनी चेयर से उठ दिशा के सामने आते हुए अपनी सर्द आवाज में ही बोला, मिस दिशा आपको मालूम है ना लेट आने वालों को सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है, तो बताइए आपको क्या सजा दिया जाए। दिशा जैसे ही देवांश की बात सुनती है उसके हाथ उसके कपड़ों पर कस जाते हैं, मगर फिर भी वे कुछ बोलती नहीं है। वहीं देवांश जब दिशा को कुछ बोलता हुआ नहीं देखता है तो वापस अपनी चेयर पर आ बैठते हुए दिशा को देख अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस दिशा मेरे सामने आकर खड़ी हो जाइए। देवांश की बात सुनकर दिशा ना चाहते हुए भी चुपचाप देवांश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं देवांश जब दिशा को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो अपनी उसी कड़क आवाज में दिशा से बोला, तो मिस दिशा आप पूरे 10 मिनट लेट आई हैं, आपकी वजह से मैंने अपनी आज की कॉफी भी मिस की और जो काम का लॉस हुआ वे अलग, तो बताइए आपको क्या सजा दी जाए। इतना बोल वे चुप हो जाता है, फिर दिशा को देखते हुए बोला,
मिस दिशा 10 मिनट लेट आने की आपकी सजा ये है कि आप इसी तरह बिना हिले डुले एक ही जगह पर पूरे 1 घंटे खड़ी रहेंगी। अगर आपने यहाँ से हिलने की बिल्कुल भी कोशिश की तो आपकी सजा बढ़ा दी जाएगी।